हेलो एंड वेलकम टू दी ओपन पॉडकास्ट। आई होप आप सबका पिछला हफ्ता एकदम बढ़िया बीता हो, A1 क्वालिटी का बीता हो, है ना। और आपका जैसा भी हफ्ता बीता आप मुझे ट्विटर पर टैग करके बता सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @NOPEN_001। आपको यूज़ करना होगा #TheOpenPodcast। अच्छा, इस हफ्ते अगर आप देखेंगे तो 15 तारीख को आ रहा है इंजीनियर्स डे, जो कि भारत में मनाया जाता है ना। और अपने आई एम गेसिंग अगर आप ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं तो आप में से काफ़ी सारे लोग इंजीनियर होंगे। इनफैक्ट अगर आप पत्थर एक रैंडमली उछालें गली पर चलते हुए तो 10 में से 5-6 लोगों पर जो गिरेगा वो इंजीनियर ही रहे होंगे, है ना। और कितनी मैजिकल सी बात है कि आप अगर मेरी आवाज़, मैं यहाँ पर जो बैठकर आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये कहीं इंस्ट्रूमेंट में सेव होगा, फिर किसी जगह अपलोड होगा, उस सर्वर से कई जगह स्ट्रीम होगा, और आप जब मन चाहेंगे आप अपने बटन एक दबाएंगे फ़ोन के ऊपर और आप ये सुन सकेंगे। ये सब कैसे हो रहा है? ये सब इंजीनियर्स ने किया है। कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा, कोई हार्डवेयर इंजीनियर होगा, अलग अलग लोगों ने डिवाइस बनाई होगी, स्ट्रीमिंग चीज़ें बनाई होंगी, सर्वर्स बनाए होंगे, जिसकी वजह से आप ये सब कुछ सुन पा रहे हैं। बट अगर आप भारत के अंदर देखें, है ना, हर साल 15 लाख इंजीनियर निकलते हैं भाई, 6,000 से ज़्यादा कॉलेजेस हैं। ये जो 15 लाख इंजीनियर हैं, ये सब तो ये काम नहीं कर रहे हैं, आई एम 100% श्योर, है ना। और अगर आपने इंजीनियरिंग करी है तो आप मुझे ऑनेस्टली बताओ यार, जिस भी लिए आपने इंजीनियरिंग करी थी, मुझे नहीं पता आपने किस ब्रांच से करी, किस ट्रेड से करी, या क्या पर्पस था आपका, बट 80-90% आई एम श्योर कि जिसके लिए भी आपने इंजीनियरिंग करी होगी, जिस भी वजह से करी होगी, आज आप वो काम नहीं कर रहे हैं। और एक बार अगर ध्यान से देखो कितनी ट्रेजिक बात है कि लोग इंजीनियरिंग इसलिए कर रहे हैं कि वो 4 साल का काउंसलिंग कोर्स समझते हैं उसे, कि भाई ये करके देखते हैं फिर समझ में आएगा कि करियर में क्या करना है। वेरी वियर्ड, नहीं? और इसके ऊपर ना बहुत सारी रिसर्च वगैरह भी निकलती रहती है। जैसे कि एक अगर आप सर्च करो, मैं आपको एक हेडिंग बताता हूँ, इसका नाम है चेंजिंग पैराडाइम्स ऑफ इंजीनियरिंग एजुकेशन एन इंडियन परस्पेक्टिव, है ना। इसको लिखने वाले हैं पवई माधेश्वरी, एस पवई माधेश्वरी एंड SD उमा मंगेश्वरी, है ना। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग पेपर। इस पेपर में किया ये है कि इन्होंने बात करी है कि अलग अलग पर्सपेक्टिव देखे जाते हैं, है ना, कि भाई स्टूडेंट्स का क्या पर्सपेक्टिव है, टीचर्स का क्या पर्सपेक्टिव है, पेरेंट्स का क्या पर्सपेक्टिव है, और इंडस्ट्री का क्या पर्सपेक्टिव है इंडियन इंजीनियर्स को लेकर। तो इनको ये पता चला कि अगर आप स्टूडेंट से बात करो, अब हम लोग भी जब स्टूडेंट थे तो क्या हम लोग खुश हो जाते थे कि भाई बहुत बढ़िया चीज़ है, इंजीनियरिंग करेंगे, मज़ा आएगा, इससे नौकरियां लगती हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। नाउ द थिंग इज़ कि होता नहीं है ये रियलिटी में, है ना। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस हैं और वो चीज़ इस पेपर में रिफ्लेक्ट होती है। ये कहते हैं कि स्टूडेंट खुश तो रहते हैं इस बात से कि यार इंजीनियर बनेंगे, नौकरी लगेगी, मज़ा आएगा, बट जब वो कॉलेजेस में जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यार यहाँ पे ना थ्योरेटिकल नॉलेज दी जा रही है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट मिसिंग है, है ना। और प्रैक्टिस भी जो है वो मेमोरी बेस्ड असेसमेंट दिए जा रहे हैं कॉलेजेस में कि यार रट्टा मारो, जल्दी रट्टा मारो, जो रट्टे में आपको समझ में आया वो उगल दो पेपर पे एंड दैट्स इट, है ना। और जब वो नौकरी लेने जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यार जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं है। और अब तो अगर आप देख रहे होगे तो भाई इतना कॉम्पिटिशन है, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ इंजीनियर निकल के आ रहे हैं, तो वो कॉम्पिटिशन भी बढ़ता जा रहा है और जो रिक्वायरमेंट है वो भी कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। कि आपने हल्का सा कोई अगर ज्ञान पा लिया है अपने लिए तो उसमें कुछ नहीं है, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, आपको बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज लर्निंग करनी पड़ेगी, तब जाकर आपको कोई फ़ायदा होने वाला है, है ना। तो ये सारी चीज़ें जब बच्चे पहुँचते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं और निकलते हैं, तब उनको पता चलता है कि ये सारे तो बड़ी अलग एक रोजी पिक्चर दिखाई जा रही थी और असलियत तो कुछ और है, है ना। और अगर आप अब पेरेंट्स का परसेप्शन सुनना चाहें तो पेरेंट्स का परसेप्शन देखो बड़ा सिंपल सा है। पेरेंट्स ये कहते हैं कि लड़का इंजीनियर बन जाए, बन जाएगा तो नौकरी पा जाएगा, नौकरी पा जाएगा तो जॉब सिक्योरिटी आ जाएगी और बस, है ना। अब इसमें ये लिखा हुआ है कि पेरेंट्स ये चाहते हैं और इसके आगे उन्हें ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता है। नाउ द थिंग इज़ कि पेरेंट्स ऐसा क्यों चाहते हैं, ये चीज़ कई बारी स्टूडेंट्स समझ नहीं पाते, हम आप नहीं समझ पाते हैं ना, हमारी एज अलग है, पेरेंट्स की एज अलग है। उनका जो टाइम था जब वो अपने यूथ में थे, जिस तरह की चीज़ों से वो निकल कर आए हैं, राइट, वो चीज़ें उस समय पर भारत की सिचुएशन ऐसी थी कि यार नौकरी मिलना मुश्किल है ना, इतना कंपटीशन है और भारत में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है। बाहर भी नहीं थी यार, इंटरनेट के आने से पहले तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ वैसे भी नहीं थी। तो उस अपॉर्चुनिटी के अभाव से जब पेरेंट्स हमारे निकल कर आए तो उन्हें ये लगता है कि जॉब सिक्योरिटी सबसे बड़ी चीज़ है। जॉब सेटिस्फैक्शन, या आप उसके लिए स्किलफुल हो या नहीं हो, या आपको जॉब कैसे मिल रही है, इन सब चीज़ों से पेरेंट्स को हार्डली मतलब होता है। उनको ये मतलब होता है कि बच्चे की जॉब लग जाए, एक बार वो जॉब सिक्योर हो जाए और उसके बाद उसका करियर सेट है। तो वही इसमें परसेप्शन दिखाई देता है। अब अगर आप बात करें इंडस्ट्री की, इंडस्ट्री वाले ये कहते हैं कि जो इतने सारे हमारे निकल रहे हैं इंजीनियर, उसमें तकरीबन 75 मिलियन जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं। और उसका रीज़न ये है कि यार देश के अंदर जो इंजीनियर निकल रहे हैं उनका नंबर तो बहुत ज़्यादा है, मगर वो एम्प्लॉयबल कितने हैं इस पर बहुत बड़ा सवाल है। कि नंबर ज़्यादा है मतलब इंजीनियर हर साल 15 लाख निकल रहे हैं, मगर उसमें से कितनों को नौकरी दी जा सकती है, कितने लोग ऐसी ट्रेनिंग पा रहे हैं इंजीनियरिंग के दौरान जिन्हें इंडस्ट्री में यूज़ किया जा सकता है, वो नंबर दरअसल बहुत कम है। और यही है सबसे बड़ी ट्रेजेडी भारत के अंदर इंजीनियर्स को लेकर। और जिस तरह की स्किल की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी नौकरी में अगर आप जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको उस पर्टिकुलर टेक्निकल फील्ड के बारे में उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो कि हो सकता है आपको ना हो अगर आप फ्रेशर हैं, मगर उसके अलावा जो स्किल की रिक्वायरमेंट होती है, जो इंडस्ट्री में कहते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए, कोलैबोरेशन का आपको आना चाहिए, आपको कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना चाहिए, राइट, आपकी लीडरशिप स्किल होनी चाहिए, आप प्रोडक्टिविटी वाली स्किल हो, आपके अंदर सोशल स्किल्स हो, इसका भी भीषण अभाव है। कि बच्चों को रट्टा मार के आपने इंजीनियरिंग में तो पढ़ा दिया, मगर वो स्किल नहीं दी जो उसको 4 साल के बाद रिक्वायर्ड है। तो इन सब चीज़ों को लेकर भी बहुत बड़ा इंडस्ट्री की तरफ से एक परसेप्शन है इस रिसर्च पेपर में कि भाई बच्चे उस तरह के नहीं आ रहे। और प्लस ये कहते हैं कि भाई लर्नेबिलिटी का भी अभाव है, कि अगर हम बच्चे को कुछ सिखाना चाह रहे हैं नया तो वो सीख नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसने जो 4 साल सीखा है वो तरीका ही उसका अलग था, कि एग्ज़ाम से एक रात पहले उठूँगा, सारी किताबें रट लूँगा और रट के जाके अगले दिन उगल दूँगा पेपर में और सब चल जाएगा। तो ये जो एटीट्यूड में प्रॉब्लम है वो इंडस्ट्री की तरफ से भी दिखाई देती है। और अगर आप फैकल्टी की बात करें, अगर आप टीचर्स की बात करें, तो टीचर्स का वही एटीट्यूड है कि हमारे ज़माने में ऐसा होता था। तो टीचर्स इस रिसर्च पेपर में लिखते हैं कि भाई जो उनका एटीट्यूड समझ में आता है वो ये है कि वो ये कह रहे हैं कि बच्चे काफ़ी बदल गए हैं, उनकी जो टेक्नोलॉजिकल समझ है या जिस तरह से वो सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं, जिस तरह से वो पढ़ाई को देखते हैं, वो देखना, वो समझना और वो करना एकदम अलग है उससे जो हम किया करते थे। और इसीलिए बच्चों और टीचर्स के बीच के जो कम्युनिकेशन गैप है और जो अंडरस्टैंडिंग का गैप है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कुछ सालों में। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को सम करके देखें तो आपको ये पता चलेगा कि एक तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि तकरीबन 80% जो इंजीनियर भारत से निकल रहे हैं वो अनएम्प्लॉयबल हैं। मतलब 100 में से 80 इंजीनियर ऐसे हैं जिन्हें आप नौकरी नहीं दे सकते, क्योंकि उन्होंने इंजीनियरिंग तो कर ली है मगर उन्होंने नौकरी करने लायक कोई भी चीज़ नहीं सीखी है। और अगर आप नौकरी करने वाली स्किल को हटा दें, अगर आप सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल स्किल की बात करें, तो एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है जो है नेशनल एम्प्लॉयबिलिटी रिपोर्ट इंजीनियर्स, ये है 2019 का सर्वे है, ठीक है। इसमें इन्होंने बताया है कि 4.5% इंजीनियर्स के पास कोडिंग की स्किल्स हैं, 2.5% इंजीनियर्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के बारे में पता है, 2.8% इंजीनियर्स को किसी भी तरह की वायरलेस टेक्नोलॉजी के बारे में पता है। अब बात यह है कि आगे आने वाले समय में वायरलेस टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग, ये सब इतना क्रूशियल पार्ट होने वाला है, हम सबकी लाइफ का एक पार्ट होने वाला है, ना सिर्फ इंजीनियर्स का। और अगर आप इंजीनियरिंग की बात करें तो ये तो बिल्कुल मैंडेटरी स्किल होने वाली है, कि इसके बिना कोई भी इंजीनियरिंग की जॉब आपको मिलेगी ही नहीं। और आप देखें परसेंटेज, 4%, 2.5%, 3% है, तो इतने मतलब 100 में से 4 बच्चों को पता है इसके बारे में या 3 बच्चों को पता है। और जब आप ये 100 और 3 का रेशियो लगा देते हैं 15 लाख पर, तो आपको समझ में आता है कि इतने बड़े जो संख्या में इंजीनियर निकल रहे हैं उन सबका फ्यूचर अंधकार में है। और वो तो एक साल में निकल रहे हैं, हर साल निकलते जा रहे हैं इतने सारे, और पिछले इतने सालों का बैकलॉग है। तो इसीलिए जो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है वो यहीं से क्रिएट होती है। और फिर अनएम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयबिलिटी के साथ साथ एक और बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वो है अंडर एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि सपोज़ करो आप भाई इंजीनियरिंग करके निकले और आपकी जिस तरह की स्किल है, आप जिस तरह से जॉब आपको मिलती, वो आपको जो सही, अगर आप एम्प्लॉयड होते, सही सैलरी आपको मिलती तो वो आपकी पर्टिकुलर सैलरी थी, बट उसकी आपको 50% ही सैलरी मिल रही है। तो इसका मतलब आपके पास नौकरी तो है, आपको काम तो मिल रहा है, आप इंडस्ट्री में तो काम कर रहे हो, बट आप अंडर एम्प्लॉयड हो क्योंकि आपकी सैलरी वो नहीं है जो आपको मिलनी चाहिए एज एन इंजीनियर। और अंडर एम्प्लॉयमेंट का रीज़न है कि भाई आपके पास स्किल सेट नहीं है कि कंपनी आपको इतनी सैलरी दें। तो ये बहुत कपल्ड चीज़ है आपस में कि आप क्या पढ़ रहे हो, कैसे निकल रहे हो इंजीनियरिंग करके, तब उससे डिसाइड होता है कि आप एम्प्लॉयड रहोगे या अनएम्प्लॉयड रहोगे या अंडर एम्प्लॉयड रहोगे, है ना। तो बेसिक अगर हमें ये समझ में आता है तो एक तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि भाई भारत के अंदर ना मशरूम्स की तरह इंजीनियरिंग कॉलेजेस पैदा हुए हैं पिछले कुछ सालों में। अब तो थैंकफुली काफ़ी सारे बंद भी हो गए, बट आज से अगर आप 5-10 साल पहले देखो तो, मैं हिंदी का वो वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता बट मैं कर देता हूँ, कुकुरमुत्ता बोलते हैं ऐसे हिंदी में, है ना। अगर आप कभी बारिश में देखें कहीं पर कोई लकड़ी का गट्ठा पड़ा हो या कोई कहीं पर ज़्यादा कुछ सीलन वीलन आ जाती है तो वहाँ पर आप देखेंगे कुकुरमुत्ते उगाते हैं, मशरूम बोलते हैं इन्हें। अलग अलग तरह के मशरूम होते हैं, कुछ जहरीले होते हैं, कुछ आप खाते भी होंगे, मशरूम की सब्जी बनती है, राइट। तो इनकी जो पैदावार होती है इसे कहते हैं कि बारिश हुई और ये अपने आप निकल आए बहुत सारे। उस तरह से हमारे देश के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेजेस पैदा हो गए थे एक समय पर, और ये कॉलेजेस सब हैं जहाँ पर आप अंदर जाओगे तो आपको पता चलेगा कि भाई इतने स्क्वायर मीटर में कॉलेज बना है, इतना बड़ा ग्राउंड है, इतनी बड़ी लैब है, मगर लैब के अंदर मास्टर नहीं है, लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहे, लैब बस वो दिखाने के लिए बना रखी है ताकि उन्हें कंप्लायंस का इशू ना आए, ताकि यूनिवर्सिटी जो यूजीसी है वो उनको ग्रांट देता रहे, और लैब में कुछ हो नहीं रहा है। मास्टर वो रखे हैं जिसने 3 साल पहले इन्हीं के कॉलेज से बीटेक किया था, वही अब बीटेक में फर्स्ट ईयर वालों को पढ़ा रहा है ना। तो दिक्कत ये है कि जब तक आपकी फैकल्टी ट्रेंड नहीं है, जब तक आपकी फैकल्टी प्रोफेशनल नहीं है, जब तक आपकी फैकल्टी को ही नहीं पता कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, क्या टेक्नोलॉजी आगे आ रही है, किस तरह की जॉब रिक्वायरमेंट आगे क्रिएट हो रही है, हमें कैसा अपने आप को कंडक्ट करना चाहिए, वो नहीं है। या फिर जब तक आपका जो सिलेबस है ना, अब तो डीम्ड यूनिवर्सिटी का कितना चलन है कि कल के दिन कोई एक कॉलेज हुआ करता था जो जिसमें ज़्यादा बच्चे आने लगे तो उसको यूनिवर्सिटी बना दिया, अब उसका अपना सिलेबस चलने लगा, उसकी अपनी किताबें चलने लगी, है ना, और उसने अपने सिलेबस के हिसाब से अपने आप पेपर वेपर सब सेट कर दिए, उसने सब अपने हिसाब से चला लिया। मगर बात यह है कि उस डिग्री का फ़ायदा है नहीं कहीं, ना उस डिग्री का कहीं यूज़ हो रहा है, ना उस करिकुलम को कोई पूछने आ रहा है। तो ये जो एक तरह से आप अगर देखें तो खिलवाड़ है बच्चों के साथ में, देश के फ्यूचर के साथ में, वो धड़ल्ले से चल रहा है। और इन सारी प्रॉब्लम्स को ना ही कोई सॉल्व करता हुआ दिख रहा है, ना ही कोई इसके बारे में बात करता हुआ दिखता है। अच्छा, इसके अलावा एक और बहुत बड़ी चीज़ हो रही है जो कि मार्केट के लेवल पर हो रही है, जॉब के लेवल पर हो रही है, वो है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जो बाकी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके ज़रिए आपकी जो करेंट नौकरियाँ हैं, है ना, जिन नौकरियों को मशीन रिप्लेस कर सकती है, जिन नौकरियों को ऑटोमेट किया जा सकता है, वो ऑलरेडी ऑटोमेट हो रही हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि अब होंगी, आज से हम 4-5 साल पहले सुनते थे सब लोग कि आगे आने वाले समय में ये नौकरियां ऑटोमेट हो जाएंगी, वो नौकरियां ऑटोमेट हो जाएंगी, वो समय आ गया है जहां पर नौकरियां लगातार ऑटोमेट हो रही हैं। तो आज के समय अगर आपके पास कोई स्पेशल स्किल नहीं है, देखिए जर्नलिस्ट आपका एटीट्यूड होना चाहिए लाइफ के प्रति, है ना, जर्नलिस्ट एटीट्यूड ये होता है कि आपको सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पता हो, है ना। मगर बात यह है कि अगर आप अपनी फील्ड के बारे में थोड़ा सा और ज़्यादा नहीं जानते हैं तो आपका पत्ता कटने की संभावना ज़्यादा है। आपको ऐसा होना पड़ेगा कि आप अडेप्ट कर सको, आप कोई नई चीज़ तुरंत सीख सको और उसे समझ सको, क्योंकि देखो ह्यूमन इंटरवेंशन को मशीन पूरी तरह से तो अपनी लाइफ टाइम में नहीं रिप्लेस कर पाएगी। और बाकी कहने को तो कुछ भी हो सकता है, आज से 20 साल पहले पॉडकास्ट, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन, इंटरनेट कुछ नहीं पता था, बट धीरे धीरे सब आ गया, राइट। तो आगे आने वाले टाइम में क्या हो जाए, बट संभावना यह है कि ह्यूमन स्किल, ह्यूमन इंटरवेंशन जो है वो कुछ लेवल तक तो रहेगा, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ जाए तब भी उसको भी संभालने के लिए लोगों की रिक्वायरमेंट होगी, मगर वो लोग लगेंगे जो उसको समझते हों। आपके तो 100 में से 3 बच्चों को इसके बारे में पता है, तो बाकी जो 97 हैं उनका तो अनएम्प्लॉयड होना तय है, क्योंकि वो जिस जॉब में पहले जाते थे वो अब AI ने रिप्लेस कर दी और AI के बारे में उन्हें पता नहीं है, है ना। अच्छा, इसके अलावा अगर आप अपने भारत में देखें इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, एक और बड़ा चलन है कि आप चाहे सिविल से इंजीनियरिंग करो, आप इलेक्ट्रिकल से करो, आप इलेक्ट्रॉनिक्स से करो, उसके बाद कॉलेज के प्लेसमेंट के समय एक कंपनी आएगी, मैं नाम नहीं लूँगा बट आप सबको पता होगा जिन्होंने इंजीनियरिंग करी है ना, वो 4-5 कंपनियाँ हैं, वो आएंगी और थोक के भाव ट्रक में भर के, ऐसे AIIB का एक स्केच भी था इसके ऊपर, वो थोक के भाव आलू टमाटर की तरह बच्चे उठाकर ले जाएंगी। और ये हैं IT कंपनीज जो ले जाके पटक देती हैं सर्विसिंग में, कि कोई टेस्ट कर रहा है सॉफ्टवेयर को, कोई बेंच पे बैठा है, कोई क्लाइंट साइड बैठा है, लेकिन काम जो है उसका वो नहीं है जो उसने 4 साल इंजीनियरिंग में सीखा। अरे भाई, सिविल इंजीनियर वहाँ पे सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग में क्या करेगा, उसने तो सिविल इंजीनियरिंग पढ़ी है। बट उनको ले जाती हैं, 5-6 महीने की ट्रेनिंग देती हैं और उसके बाद इस काम में लगा देती हैं। अब इस चीज़ में दिक्कत आ रही है, दिक्कत ये आ रही है कि USA वगैरह में तो वैसे ही H-1B वीज़ा पे इतने सवाल हो गए हैं ना, उनके स्ट्रिक्ट हो गए हैं रेगुलेशंस रूल्स वगैरह, तो बाहर जाने की संभावनाएं वैसे भी कम थी और भी कम है। और भारत के अंदर भी इस तरह की जॉब्स की जो रिक्वायरमेंट है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। अब लोगों को चाहिए ऐसे लोग जिन्हें सच में कोडिंग आती हो, जो सच में डेवलप कर सकते हो, डेवलपर चाहिए। अब वो टेस्टर वाली जो बात है उसकी रिक्वायरमेंट धीरे धीरे कम होती ही चली जाएगी। और आप कोई भी उठाकर देखें, आप बहुत सारे आते हैं, लिंक्डइन लर्निंग का रिपोर्ट आता है ना, कॉग्निजेंट की रिपोर्ट आती है, यूडेमी की रिपोर्ट आती है, कोर्सेरा की रिपोर्ट आती है, सारी ये जितनी लर्निंग प्लेटफॉर्म है और बाकी जो कंपनीज हैं ये अपनी अपनी रिपोर्ट निकालती हैं। ये रिपोर्ट में ये बताती हैं कि पिछले 1 साल में, 2 साल में या आने वाले 5 सालों में कौन सी ऐसी जॉब हैं जिन पे ज़्यादा फोकस आ रहा है, क्योंकि भाई इन्हें इंडस्ट्री का सारा कुछ पता है, इन्हें पता है बच्चे क्या कोर्स कर रहे हैं और इन्हें पता है कि किस तरह के लोग हायर किए जा रहे हैं। ये कहते हैं कि एज कंप्यूटिंग, ऑगमेंटेड रियलिटी, AI बेस्ड सिस्टम्स, डेटा एनालिटिक्स, है ना, इन सब की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ती जा रही है और ये अगले 10 सालों में ओवरटेक कर लेंगी बाकी जो रेगुलर जॉब्स हैं, और रेगुलर जॉब्स जो हैं वो रिप्लेस हो रही हैं। तो अगर आप ऐसी किसी जॉब में हैं जो रिप्लेस हो सकती है, तो आपको अभी से कोशिश करनी होगी कि आप ऐसी कोई डेवलप स्किल डेवलप करें जिसकी रिक्वायरमेंट आगे आने वाले 5-10 सालों में हो रही हो, राइट। और इसके अलावा क्या किया जा सकता है, और अगर हम ये देखें तो एक तो सिंपल सी यही बात है भाई कि ये जो मशरूम्स की तरह बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस पैदा हो गए, इनको सरकार थोड़ा सा देखे कि यार इतने ना हो, है ना, थोड़ा उनको स्ट्रिक्ट करे, और बाकी जो लैब वगैरह इन्होंने स्क्वायर मीटर दिखाने के लिए बना रखी है उसको सिर्फ शो पीस की तरह ना रखा जाए, उसका यूज़ हो, है ना, उस पर एम्फोसिस हो, जो करिकुलम डिज़ाइन किया जाता है उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज पर एम्फोसिस हो। क्योंकि भाई इंजीनियरिंग क्या है, आपने किताबी नॉलेज पढ़ के एक रात पहले एग्ज़ाम के कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगी तब तक ना उसको आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे और ना ही किसी जॉब में आप जा पाओगे, है ना, तो उस पर भी फोकस हो। अच्छा, इन सब चीज़ों पर प्रॉमिस किया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। ये कहते हैं कि यार न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ना हम रॉटन लर्निंग को हटाएंगे, हम क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करेंगे, हम 4th ईयर को पूरा रिसर्च ओरिएंटेड कर देंगे, हम एक फ़ीस लगाएंगे कि इससे ज़्यादा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन चार्ज नहीं कर सकते, है ना, हम एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन सेटअप कर देंगे, हम इंटर्नशिप पे फोकस करेंगे, हम हर कॉलेज में एक लैब बनाने पर वो करेंगे, मैंडेटरी कर देंगे, है ना। बट होता क्या है ना कि ये सब चीज़ें पेपर्स पे तो बहुत अच्छी लगती हैं, है ना, किसको नहीं अच्छी लगती पेपर पे काले रंग से अक्षरों से लिखी हुई बातें कि ये कर देंगे वो कर देंगे। बात ये है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन और उस इम्प्लीमेंटेशन से करेंट सिचुएशन पे आने वाला इम्पैक्ट, इन दोनों ही चीज़ों को देखने के लिए अभी हमें वेट करना पड़ रहा है। हमें नहीं पता NEP कब आएगी, है ना, धीरे धीरे आएगी, एक एक चरण में आएगी, कई सारे स्टेप्स होंगे। प्लस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक और बात है कि स्टेट्स को काफ़ी पावर दी गई है, कहा गया है कि आप कैसे इम्प्लीमेंट करते हो, कैसे लगाते हो, वो आपके हाथ में भी है। तो स्टेट्स कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, इसमें कितनी डिक्रिपेंसी होती है अक्रॉस दी स्टेट्स, ये सब बातें अभी देखने के लिए हैं। तो जब तक कोई भी चीज़, कोई भी पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं हो जाती और अपना इम्पैक्ट नहीं दिखाती, तब तक इट इज़ एज़ गुड एज़ नो पॉलिसी। तो NEP से भी क्या होने वाला है ये सब भी हमें देखना पड़ेगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो हमें ये पता चलता है कि इंजीनियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके बिना हमारी दुनिया में काफ़ी सारी चीज़ें होनी इम्पॉसिबल हो जाएंगी, मगर भारत से जो इंजीनियर निकल रहे हैं वो लगभग अनएम्प्लॉयबल हैं, वो अपना काम ठीक से नहीं जानते, उन्हें अपना काम नहीं आता और उस काम के लिए उनके अंदर इंटरेस्ट भी नहीं दिखाई देता। और बाकी जो चीज़ें चल रही हैं वो भी बड़ी कंसर्निंग है कि जिस तरह से हमारी सिचुएशन चेंज हो रही है, हमारी जॉब रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है, उस हिसाब से अगर हमारे भारत के युवा तैयार नहीं हैं तो हमारे लिए आगे आने वाले समय में तकलीफें ही तकलीफें दिखाई देती हैं। प्लस इंजीनियरिंग एक तरह से धंधा बन गया है कई सारे कॉलेजेस का, मशरूम्स की तरह कॉलेजेस उगे हुए हैं और चारों तरफ वो अपना बिजनेस चला रहे हैं, और उस बिजनेस चलाने के ज़रिए वो हमारे कई सारे जो यूथ हैं उनका फ्यूचर ख़राब करने में लगे हैं। सरकार ये सब कुछ जानती है, लोग भी ये सब कुछ जानते हैं, मगर ना इसके बारे में कोई बात करता है और ना ही इस पे कोई स्टेप लिए जाते हैं। जो पॉलिसी हमने बनाई है पेपर पे अच्छी लग रही है, बट इम्प्लीमेंटेशन अगेन हमें नहीं पता कैसे होने वाला है। तो काफ़ी हेजी सी पिक्चर है ना। अब इंजीनियर्स डे जो कि 15 तारीख को आने वाला है, 15 सितंबर को हर साल होता है भारत में, तो इस पे तमाम तरह से बात की जा सकती थी। ये भी कहा जा सकता था कि इंजीनियरिंग कितनी प्यारा प्रोफेशन है, इंजीनियर्स डे इसलिए मनाते हैं ना, उस तरह से भी बात की जा सकती थी। बट मुझे ऐसा लगा कि मैं आपसे खरी खरी बात करूँ, वो बात करूँ जो थोड़ा लोग कहने से हिचकते हैं या थोड़ा कम बात करते हैं इसके बारे में, ताकि इसके बारे में भी थोड़ी सी एटलीस्ट एक कॉन्वर्सेशन शुरू हो सके। उम्मीद है कि आपको इसमें मज़ा आ रहा होगा, है ना। एक इसके लिए वीडियो भी बनाया जाएगा, वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा, यूट्यूब चैनल एन ओपन लेटर पर आएगा। और इसके अलावा हमारा न्यूज़लेटर वगैरह आता है, वो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं। वीडियो आते हैं 3-3 हर हफ्ते, ट्यूज़डे, थर्सडे, सैटरडे, तो उसे जाकर आप देखो। और ट्विटर पे जो भी आपके सजेशन है, पॉडकास्ट कैसा लग रहा है, क्या और कर सकते हैं, वो सब आप दे सकते हो। बस हमें टैग करना है NOPENLETTER001, और हैशटैग यूज़ करना मत भूलना, उसके बिना मुझे नहीं दिखेगा आपका पोस्ट। मैं हैशटैग पे क्लिक करके ही देखता हूँ। दी ओपन पॉडकास्ट हैशटैग का नाम है, तो हैशटैग यूज़ करो, इस पॉडकास्ट को शेयर करो, और जहाँ कहीं भी देख रहे हो उसे फॉलो वॉलो कर लो यार। स्पॉटीफाई वगैरह पे, एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, दुनिया के हर ऐप पे तो मिल जाता है आपको, तो सर्च करो जहाँ पर भी देख रहे हो, जो भी आपका फेवरेट ऐप है वहाँ पर इसे फॉलो करो, ताकि थोड़ी रैंकिंग वैंकिंग ऊपर आए और लोगों को पता चले, है ना। और चलिए इसी इन्हीं सब बातों के साथ आपसे विदा लेता हूँ मैं इस एपिसोड में। आपसे मिलूंगा मैं अगले एक और इसी तरह के एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।